दिन भर तारीख 8 अगस्त दिन सोमवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में अस्पताल के भीतर धमाका, कम से कम 63 लोगों की मौत।
मैं भी अपने ऑफिस से ड्यूटी के लिए आ रहा था कि मैं जैसे ही अपने गेट पे पहुंचा तो वहाँ से धमाका हुआ और लाशें ही लाशें थे, खून बिखरे हुए थे और जख्मी थे, खून में लखपत लोग थे।
GST विधेयक पर लोकसभा में जारी है बहस।
ये भारत के राजनीतिक नेताओं का दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पार्श्वभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं।
भारत के अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में पहुंचे। कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के क्वेटा में एक अस्पताल पर आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई है और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के सिविल अस्पताल में हुआ। मारे गए लोगों में करीब 18 वकील हैं। इस हमले से कुछ देर पहले बलोच बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिलाल अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये सभी वकील इसके बाद अफसोस के लिए अस्पताल पहुंचे थे। हमले के विरोध में पाकिस्तान में वकीलों ने मंगलवार को यानी कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। पंजाब के गोरक्षा दल के प्रमुख सतीश कुमार पर गोरक्षा के नाम पर कुछ लोगों को पीटने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें गोरक्षा दल के सदस्य कुछ लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो क्लिप के आधार पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पंजाब के गोरक्षा दल के प्रमुख सतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग गोरख धंधा कर रहे हैं। रूसी पैरालंपिक कमेटी ने कहा है कि अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए उसके सभी खिलाड़ियों को रोकना मानवाधिकार का गंभीर हनन है। रूसी पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष व्लादिमिर लुकिन ने कहा कि ज्यादातर रूसी पैरालंपिक खिलाड़ियों को बेवजह सजा दी जा रही है।
Needless to say that the majority of the athletes,
ये कहने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर खिलाड़ी जिन पर बैन लगाया गया है वो साफ हैं। उनका कई मौकों पर कई बार टेस्ट किया जा चुका है। ये थे व्लादिमिर लुकिन के शब्द। रूस इस प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा ने रियो ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। दूसरी लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक महिला और उसका नवजात शिशु भी शामिल है, जिन्हें गोरखा जिले से एक गांव से इलाज के लिए काठमांडू लाया जा रहा था। एक अधिकारी ने BBC नेपाली सेवा को बताया कि संभव है कि भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन अभी हादसे की जाँच की वजह की जाँच की जा रही है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज पाकिस्तान से कर रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में एक अस्पताल के भीतर संदिग्ध आत्मघाती हमले में कम से कम 63 लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। हमले की वजह का अभी तक पता नहीं चला है और किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। अस्पताल में धमाके के बाद गोलियां भी चली। धमाका होने के बाद हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया,
मैं भी अपने ऑफिस से ड्यूटी के लिए आ रहा था کہ میں جیسے ہی اپنی گیٹ پہ پہنچا تو وہاں سے دھماکہ ہوا اور سب لوگ جو تھے اسی سائڈ پہ باہر آ رہے تھے. جیسے میں انٹر ہوا بائک کو ادھر ہی چھوڑ دیا میں نے, باہر آیا تو یہاں پہ لاشیں ہی لاشیں تھے, خون بکھرے ہوئے تھے اور زخمی تھے, خون میں لک پت لوگ تھے.
جس سمے دھماکہ ہوا تو وہاں کافی تعداد میں وکیل موجود تھے. یہ وکیل بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے ادھیکش بلال انور قاسی کی ہتیا کے بعد افسوس جتانے اسپتال گئے تھے, جن کی صبح اجیات لوگوں نے گھر سے عدالت جاتے ہوئے فائرنگ کر کے ہتیا کر دی تھی. بلوچستان کی پرانتی سرکار نے اس گھٹنا پر 3 دن جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 7 دن کے شوک کی گھوشنا کی. بلوچستان کے مکھیہ منتری ثناء اللہ جہری نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیے اور 24 گھنٹے میں رپورٹ مانگی. انہوں نے کہا,
انہوں نے بالکل پری پلان کیا ہے کہ جب ہم یہاں پر کانسی صاحب کو ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو اس کو ظاہر ہاسپٹل لے جائیں گے اور وہاں پر وکلا جمع ہوں گے, تو پھر انہوں نے وہ بالکل انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راہ جو ہے معاملات میں انوالو ہے اور یہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو ہم خراب کریں اور خصوصاً جو سی پیک آ رہا ہے اور سی پیک کو جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹائیں.
یہ تھے بلوچستان کے مکھیہ منتری. مرنے والوں میں اور گھائلوں میں وکیل و میڈیا کے پرتنیدھی شامل ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ادھیکش سید علی زافا نے سرکار سے کہا کہ وہ چرم پنتھ سے راشٹری استر پر نپٹے.
ہر ٹیررسٹ چاہتا ہے کہ انٹلیکچوئل کمیونٹی جو ہے اس کو سب سے پہلے اس پہ حملہ کرے. وکیلوں پہ اٹیک کیا گیا تاکہ ہم اپنی پروفیشنل اور قومی ڈیوٹیز ہم نہ ادا کر سکیں. ہمارے پرائم منسٹر اور جو ہمارے جتنے چیف منسٹرز ہیں ہر روز ان کیمرہ میٹنگ کریں, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان جب باقی ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ ہر روز مشاورت ہوتی. ان کی لاسٹ ٹائم کب میٹنگ ہوئی تھی؟ ضروری ہے کہ ہم حکومت سے ڈیمانڈز ریز کریں.
یہ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ادھیکش سید علی زافا. تازہ جانکاری کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کوئٹہ میں بی بی سی اردو کے سہیوگی محمد قاسم سے.
کوئٹہ شہر کا علاقہ ہے منوجان روڈ. سب سے پہلے یہاں یہ جو سینئر وکیل ہیں اور بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر بلال انور قاسی, ان کو نامعلوم مسلح افراد نے ٹارگٹ کیا جس میں وہ ہلاک ہوئے. تو ان کی ہلاکت کی خبر سن کر وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد سیول اسپتال کوئٹہ پہنچ گئی. یہ سیول اسپتال کوئٹہ جناح روڈ پر واقع ہے اور شہر کے وسط میں. تو چونکہ اس کے ساتھ ہی ہے ضلع کچہری, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس وغیرہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہیں. تو ان وکلا کی موجودگی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اتنا بڑا زوردار دھماکہ تھا کہ شہر کے دور دور کے علاقوں میں اس کی آواز سنی گئی. تو اس ان دونوں جو واقعات ہیں ان میں اب تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے اور سول اسپتال کے جو ایم ایس ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ ان میں 63 لوگ ہلاک ہیں اور 120 زخمی ہیں. لیکن بعد میں جو محکمہ صحت کے ایک سینئر اہلکار ہیں ڈپٹی سیکٹری, انہوں نے بتایا کہ 70 لوگ ہیں. تو اس حوالے سے اب تک جو متضاد باتیں سامنے ہیں, لیکن زخمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اس لیے ہلاکتوں میں جو اضافہ ہے اس کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے جو مطلب شواہد ہیں ان کے مطابق جو دھماکہ ہوا ہے وہ خودکش ہے, لیکن ابھی تک آفیشلی اس کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے. میری بات ہوئی بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ شواہد تو خودکش کے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے نا اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقات کے بعد ہی یہ بات سامنے مطلب آ سکے گی کہ خودکش تھا یا کوئی پلانٹڈ تھا.
میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہوا اس حملے کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟
دیکھیں اب تک جو سرکاری حکام ہیں انہوں نے آفیشلی تو یہ نہیں بتایا, لیکن جو بکلا ہیں یا جو ان سے ہماری بات ہوئی ہے جو مطلب ان آفیشلی طور پہ سرکاری حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہبی شدت پسند ہے وہ اس واقعے کے جو ہے نا پیچھے ہو سکتے ہیں. پاکستان فوج کے سربراہ ہیں جنرل رائف شریف, وہ بھی کوئٹہ پہنچے ہیں اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس واقعے کے بعد فوری طور پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ خیبر پشتونخوا میں جو دہشت گردی کی کاروائی میں جو ملوث تھے ان شکست کھانے کے بعد اب انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے. انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے اس واقعے کے پیچھے جو سازش تھا وہ کار فرما ہے پاکستان اور چین اقتصادی راداری کو جو ہے نا ناکام بنانے اور اس کو سبوتاش کرنے کے لیے یہ دھماکہ کیا گیا ہے. اور
جو بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے.
جی یہاں جتنی بھی مطلب اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں نہ صرف چیف منسٹر بلکہ جو آرمی چیف ہے, جو فوجی حکام ہیں, یہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں, वो तसलसल के साथ इसका इल्जाम इंडिया पे आयद कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इंडिया और जो अफगानिस्तान में जो एनडीएस है वो मिल के जो है ना बलूचिस्तान में ये सूरतयाल जो है ना वो पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो ये तसलसल के साथ वो इल्जाम लगा रहे हैं, और अब कुछ वक्त से जो है ना जब से ये जो सीपैक का मामला है उसके बाद से ये जो सरकारी हुकाम है उनका ये भी कहना है कि वो ये जो है ना सीपैक को नाकाम बनाने के लिए है।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में अस्पताल के भीतर धमाके में कम से कम 63 लोग मारे जा चुके हैं और मृतकों की तादाद और बढ़ सकती है। हमारे सहयोगी बीबीसी उर्दू के मोहम्मद काजिम जानकारी दे रहे थे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुख भारत का करते हैं, जहां की लोकसभा में जीएसटी यानी कि सामान और सेवा कर विधेयक पर चर्चा जारी है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है और इसके बाद ये विधेयक लोकसभा में एक बार फिर से पेश किया गया है। किस तरह से चर्चा हुई और किस तरह से चर्चा जारी है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल अहमद। इकबाल, सरकार की ओर से क्या क्या तर्क दिए गए हैं, आज चर्चा किस तरह से हुई?
मोहनलाल, हम और आप दोनों जब स्टूडियो में घुस रहे थे उस वक्त तक वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे थे, और जाहिर है वो अपनी सफाई दे रहे थे कि जो विपक्ष के संशय थे, जिन चीज़ों पर विपक्ष को थोड़ा बहुत एतराज़ था। लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत देर तक बात की, तकरीबन 40 मिनट बात की, और अंत में उन्होंने तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा कहा और कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की उच्च परंपराओं की जीत है, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है। पहले सुन लेते हैं कि मोदी ने क्या कहा।
ये हिंदुस्तान है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी है, ये भारत के राजनीतिक नेताओं का दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पार्श्वभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है।
नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने और कुछ क्या कहा?
जी, एक तो ये तो खैर एक आप ये कह सकते हैं कि औपचारिकता होती है सबका शुक्रिया अदा करना और ये बातें करना, लेकिन जो दो तीन खास बातें थीं कि क्या संघीय ढांचा को इससे कोई ख़तरा होगा, क्या राज्यों के हितों का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं, क्या गरीबों के हितों की बात होगी कि नहीं, इस पर भी उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की।
जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग, और एक कानून एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। आज इस जीएसटी के बाद मेरा अंदाज है 7 से लेकर 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को व्यापारी को जुड़ना पड़ता है, इसके कारण इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा।
नरेंद्र मोदी विपक्ष को जो उसका संशय है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। इकबाल, ये बताइए कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की जो भूमिका रही, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी और उसका अड़ियल रवैया भी था, लेकिन राज्यसभा में आखिरकार उसने इस बिल के पक्ष में वोट डाला, आज कांग्रेस की क्या दलीलें थी?
जी, आज कांग्रेस की तरफ से जो बहस की शुरुआत की उनके वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने शुरुआत की, और उन्होंने एक तरह से रूलिंग पार्टी पर, सत्ताधारी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप संसद को एक माइनॉरिटी पार्टनर, यानी आप संसद की गरिमा को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिल जो है वो मेजॉरिटी से पास हो जाए। लेकिन उसके आगे कांग्रेस के एक दूसरे वरिष्ठ नेता जो सदन के नेता भी हैं लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन तो किया है, लेकिन वो ये याद दिलाना नहीं भूले कि यही पार्टी जब विपक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी थी तो उसका क्या रवैया था। आप सुनिए खड़गे साहब क्या बोलते
हैं। अब क्या हो गया, अब कितने हाथ कट गए, कौन से कट गए। दूसरी चीज, वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या कहा, मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा, दिस विल डिस्ट्रॉय आवर फिस्कल ऑटोनॉमी, सो वी डोंट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द जीएसटी बिल। जब आपका ये एटीट्यूड है तो हमारा क्या कर रहना चाहिए था।
तो जैसा कि आपने सुना मोहनलाल, मल्लिकार्जुन खागरे याद दिला रहे थे। और बस एक संक्षेप में ये बताना ज़रूरी है अपने श्रोताओं को कि ये 2006 के बजट में वित्त मंत्री उस वक्त के जो पी चिदम्बरम थे वो लेके आए थे, और 2011 में संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी कांग्रेस सरकार, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। और आज अब 5 सालों के बाद ये बिल उम्मीद है कि राज्यसभा में लोकसभा में पास हो जाएगा, फिर राज्यों को जाएगा, चूँकि ये संविधान संशोधन बिल है और कम से कम 15 राज्यों की सहमति जब मिल जाएगी तब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद। तो जीएसटी विधेयक पर इस समय लोकसभा में बहस जारी है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में भारत विरोधी आंदोलन से राज्य में एक महीने से अस्थिरता बनी हुई है और अब सरकार ने कर्फ्यू और सख्त कर दिया है। प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ रही है। अब तो भारत का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद बताया कि कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है। यहां वो कश्मीर की स्थिति को राजनीतिक तरीकों से सामान्य करने पर बात करने के लिए आई हैं। श्रीनगर में पैरामेडिक स्टाफ ने भी बच्चों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
एक महीने से लगातार कर्फ्यू और प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की और बताया कि कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कश्मीर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के बारे में सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में स्थिति की समीक्षा की। अपोजिशन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली जाने पर महबूबा मुफ्ती की आलोचना की है और कहा है कि 31 दिन बीतने के बाद इन्हें अब स्थिति चिंताजनक लगने लगी है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज श्रीनगर में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया।
हमें यकीन दहानी दिलाई गई थी जब हम होम मिनिस्टर से मिले कि पैलेट गन को अभी इमीडिएटली बंद किया जाएगा, लेकिन आज के दिन तक अभी नहीं। कल ही पटना में और दूसरे जगहों पे कोई 100 के करीब जख्मी हो गए हैं। ये यहाँ के IGP ने माना 1500 लोगों का अरेस्ट किया गया।
आज कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी कस्बा बिजबिहाड़ा के नागरिकों ने प्रदर्शन किए, जिसके बाद फोर्सेस की कार्रवाई में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति नाजुक है। ऐसी ही कार्रवाई में पिछले जुमे को भी एक ही दिन में 4 लोग मारे गए और 650 घायल हो गए थे। उत्तरी जिला कुपवाड़ा में पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में 3 BSF जवान और 1 चरमपंथी मारे गए। 8 जुलाई को पुलिस के एक ऑपरेशन में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु से ही कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन फूट पड़ा। पुलिस का कहना है कि 31 दिन में 1500 से अधिक विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं घटी। प्रदर्शनकारियों पर फोर्सेज की फायरिंग से अब तक 60 लोग मारे गए हैं, जबकि 3000 के करीब घायल हैं, जिनमें 400 ऐसे हैं जिन्हें छर्रे यानी पैलेट्स लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आंखों में छर्रे लगने से 100 से अधिक युवा अंधे हो गए हैं और अधिकतम की 1 आंख नष्ट हो गई है। श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने भी आज हॉस्पिटल प्रेमिसेज में ही प्रदर्शन किया।
CRPF और पुलिस है, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ये टायर गैस शेल्स फायर किए इन द कैजुअलिटी। हम उनको अपील करते हैं, प्लीज हमको ये जॉब करने दे, हमको सर्व करने दे टू द ह्यूमैनिटी। जो हम देख रहे हैं छोटे बच्चे, उनकी आंखें चली जा रही है, काफी ज्यादा इंजर्ड है। एक वार्ड में माँ एडमिट है, दूसरी वार्ड में बच्चे एडमिट है। इट इज टोटली अ वॉर लाइक सिचुएशन।
इस दौरान प्रशासन ने अलगाववादी नेताओं और इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद या जेलों में कैद किया है। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने रात को भी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, क्योंकि लोग जगह जगह रात को मोमबत्तियां और मशालें जलाकर प्रदर्शन करते हैं। अलगाववादियों ने पहले ही 12 अगस्त तक बंद का आह्वान किया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 14 और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दौरान कर्फ्यू को सख्त किया जाएगा, क्योंकि घाटी में इन अवसरों पर स्थिति भयंकर हो सकती है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
एक बार फिर से रुख अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। जापान के सम्राट अकीहितो ने TV पर अपने भाषण में अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये बात हालांकि साफ शब्दों में नहीं कही, पर बढ़ती उम्र और उनकी तबीयत को इसका कारण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि उनकी सरकार सम्राट की इस इच्छा पर विचार करेगी। सुनिए BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा वैभव श्रीवास्तव से।
जापान के सम्राट अकीहितो ने जनता के सामने दिए अपने भाषण में संकेत दिए हैं कि वो अपनी गद्दी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि वो अपनी उम्र की वजह से आने वाले समय में अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाएंगे। जापान में बेहद लोकप्रिय और माननीय सम्राट का ये केवल दूसरा भाषण था जो TV पर दिखाया गया। सम्राट अकीहितो ने अपने संदेश में कहा,
सनोयोना
कुछ साल पहले मेरे दो ऑपरेशन हुए थे और उम्र की वजह से मैं कमज़ोर महसूस करने लगा। इन तजुर्बों ने मुझे बताया कि मैं अपने कर्तव्यों को पहले की तरह निभा नहीं पाऊंगा। मैं अपने देश, अपनी जनता और अपने उत्तराधिकारियों के लिए क्या करूं? 80 साल की उम्र में आज मैं खुशनसीब हूं कि मेरी सेहत ठीक है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाऊंगा।
जापान के सम्राट आकिहितो के शब्द। इस टीवी प्रसारण के कुछ ही देर बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि सरकार में सम्राट की इच्छा पर ध्यान से विचार होगा।
मैं इस बात को समझता हूं कि जापान के सम्राट ने गंभीरता से अपनी बात को जनता से कहा। सम्राट अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं और उनकी सेहत को देखते हुए मैं इस बात की इज्जत करता हूं कि सम्राट पर कितनी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमारी सरकार बहुत सोच समझकर ही फैसला करेगी कि आगे क्या करना है।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। जापान की राजधानी टोक्यो में सम्राट के टीवी प्रसारण को देखने के बाद इन लोगों ने कहा कि वो सम्राट के फैसले का सम्मान करते हैं।
वो काफी बुजुर्ग हैं और इसलिए यही सही होगा। अब युवराज को गद्दी संभालनी चाहिए।
उनकी उम्र काफी हो गई है और उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी मर्जी पर विचार करना चाहिए।
टोक्यो में सम्राट का टीवी प्रसारण देखने के बाद कुछ लोगों के शब्द। माना जा रहा है कि सम्राट आकिहितो ने स्पष्ट शब्दों में पद छोड़ने की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसे राजनैतिक दबाव भी माना जा सकता था। जापान में अब तक सम्राट के गद्दी छोड़ने के मुद्दे से जुड़ा कोई भी कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
जापान के सम्राट ने अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई। और अब कार्यक्रम में आपकी चिट्ठियों की बात करेंगे। हाँ, रियो ओलंपिक की खबरें थोड़ा देर से लेके आएंगे।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं, उनके पास चिट्ठियां हैं हमेशा की तरह, पोस्टकार्ड भी हैं, ईमेल भी हैं।
जी हाँ।
शुरुआत आप मुझे पोस्टकार्ड से करना चाहते हैं।
पोस्टकार्ड से करूंगी। मूलाचल कन्याकुमारी तमिलनाडु से हमें पोस्टकार्ड मिला है। एम वामदेवन नायर ने भेजा है और रोमन में लिखा है क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें हिंदी लिखनी नहीं आती है।
कन्याकुमारी तमिलनाडु से रोमन में पोस्टकार्ड लिखा
जी
है।
हाँ।
क्या बात है, हमारे श्रोता देखिए कहाँ कहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं और उसके बाहर भी हैं।
लिखते हैं कि मैं 1989 से बीबीसी सुन रहा हूँ। इनकी फरमाइश है कि रिहान फजल कभी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के जीवन पर विवेचना कार्यक्रम करें। और ये सब लिखने के बाद वामदेवन नायर साहब ने ये भी कहा है कि चिट्ठी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है।
वाह नायर साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया। एक तो तमिलनाडु से और वो भी कन्याकुमारी से आपने चिट्ठी लिखी है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप इतने समय से हिंदी रेडियो सुन रहे हैं और आपने चिट्ठी भी लिखी, हालांकि हिंदी आपकी पहली भाषा नहीं है। जहाँ तक कामराज साहब के बारे में विवेचना करने का सवाल है, तो ये तो आइडिया ही मुझे बहुत पसंद आ गया। मैं रेहान साहब से ज़रूर बात करूँगा और आने वाले दिनों में अगर कभी मुमकिन हुआ तो के कामराज पर विवेचना आप सुन पाएंगे। और लिखते रहिएगा, ये गुजारिश मेरी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है।
ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश से पोस्टकार्ड है असद अली का। कह रहे हैं कि 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी की वर्षगांठ थी, लेकिन बीबीसी हिंदी सेवा ने स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब पर कोई श्रद्धांजलि पेश नहीं की। उन्हें याद करके उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पुरानी रिकॉर्डिंग अगर श्रोताओं को सुनवा देते तो श्रद्धांजलि दी जा सकती थी।
असद अली साहब, मोहम्मद रफ़ी हमारे दिलों में रहते हैं। आप चाहे उन्हें रेडियो पर सुने ना सुने, कभी उनके गाने अरसे तक न सुन पाएं, लेकिन ऐसा कोई मौका होता नहीं है जब मोहम्मद रफ़ी साहब को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उनके चाहने वाले याद न करते हों। हमारे पास, अगर आप श्रोताओं को याद हो, हमारे पास इंटरव्यू एक मोहम्मद रफ़ी साहब का है। जितनी मासूमियत से उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए हैं, जितनी बार उस इंटरव्यू को सुना जाए उतना बेहतर लगता है। तो उनकी कोई वर्षगांठ हो, पुण्यतिथि हो या ना हो, हम कोशिश करेंगे कि उस इंटरव्यू को हम आपको फिर से एक बार सुनाएं।
एक पत्र है लंबा सा, पचीरा अररिया बिहार से लिखकर भेजा है। लिखने वाले हैं शेख मुस्लिम।
मैं पढ़ पा रहा हूँ, शेख मुस्लिम।
शेख मुस्लिम ने लिखा है, कह रहे हैं कि 1983 से बीबीसी हिंदी और उर्दू ये दोनों सुनते हैं। और निष्पक्षता की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे संसार में बीबीसी अपना स्थान निष्पक्षता के कारण बनाए हुए है और कश्मीर के अस्पतालों से घायलों के परिजनों से बातचीत कश्मीर,
ये जुबैर अहमद की रिपोर्टिंग
जी हाँ
बात
उसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसाने वाले नौजवानों से बातचीत और भारतीय सेना के जवानों की बातें भी इनको सुनने को मिली, इसलिए जुबैर अहमद साहब को शुक्रिया अदा कर रहे हैं निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख मुस्लिम साहब, आप उर्दू भाषा भाषी हैं, आपने फिर भी हिंदी में, बहुत शुद्ध हिंदी में लंबा खत लिखा है, लिखते रहिएगा और सुनते रहिएगा।
अब मैं ईमेल्स लेती हूँ। बुलडाणा महाराष्ट्र से एहसान असगर,
बहुत ही जाना पहचाना नाम है जी,
हमेशा ईमेल भेजते हैं।
तो आप देखिए ना, बिहार, कश्मीर, कन्याकुमारी और अब महाराष्ट्र से ये चिट्ठियाँ आई हैं।
कह रहे हैं कि हमारे देश में बच्चों से ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो
बनोगे खराब, बचपन से सुनते आए हैं जी, बिल्कुल।
और खेलों के प्रति यही भावना है हमारी, फिर किस आधार पर हम तमगों की उम्मीद करते हैं जब कोई,
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात इनकी है। और वाकई ये अब तो खैर माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो खेल के मैदान में जाने वाले को बहुत ही डांट पड़ती थी, खेलते रहोगे पढ़ते क्यों नहीं।
और कह रहे हैं कि हर सरकार का रवैया उदास है, स्कूल में मैदान नहीं है बच्चों के लिए, इंडिया बोल इस विषय में ना ही करते तो अच्छा होता।
अच्छा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको बार बार हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है, अपने श्रोताओं को याद दिलाना पड़ता है, ताकि सच्चाई हमारी नज़रों से ओझल ना हो।
और राजेश जी, आखिरी ईमेल नेपाल से आया है। गणेश प्रसाद हुजदार लिखते हैं, आपकी राय का समय सिर्फ 5 मिनट का होने के कारण 4-5 श्रोताओं के ही खत शामिल होते हैं।
लगता है हुजदार साहब का खत जो है हम पिछली बार शामिल नहीं कर पाए, इसलिए ये नाराज हैं।
कह रहे बड़ी मायूसी होती है।
जी मायूसी होती है, लेकिन हुजदार साहब आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपकी चिट्ठी अक्सर शामिल होती है। अब समय हमारा खत्म हुआ, तो चलते चलते श्रोताओं को पता बता देते हैं। ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk और अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपनी चिट्ठी सुन ली और अब बात करते हैं रियो ओलंपिक की।
बीबीसी ओलंपिक्स रियो अपडेट।
सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं नॉरिस प्रीतम को, जो कि रियो से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नॉरिस, सबसे पहले तो भारत के अभिनव बिंद्रा, जो कि 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में पहुंचे, उनकी कहानी सुनाइए, कैसे पहुंचे?
उनकी कहानी ये है कि मेरा जहां तक मतलब मैं कहना चाहूंगा कि शायद वो थोड़ा मुश्किल से ही पहुंचे हैं, शायद 7th पोजीशन में रहकर आखिर में जाके उन्होंने अच्छी शूटिंग करी जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुंच सके, वरना शायद वहां भी हमें 2 दिन के बाद एक और तीसरे दिन की शूटिंग में हमें शायद निराशा झेलनी पड़ती। और तो इसलिए कुल मिला के आज का दिन शायद थोड़ा सा भारत के लिए अच्छा रहा है। और गगन जो है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो बाहर हो गए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। और इस वक्त हॉकी में जो है भारत पीछे चल रहा है 1 गोल के मुकाबले से। तो अभी तक का कुल जो यहाँ पे हाल वो यही है रियो में, जहाँ तक भारत के खेमे का सवाल है।
अगर भारत के खेमे की हम बात करें तो इस समय नजर आज कौन कौन से मैच होने हैं और नजर किस पे रहेगी?
आज सारी नजरें जो थी वो इसी पे थी। अब शाम को ऐसा कोई खास इवेंट नहीं है जिसमें कि हम अपनी नजर दौड़ा सकें, बस सबकी निगाह अभी करीब आधे घंटे के बाद यहाँ रियो के टाइम से बिंद्रा का फाइनल होने वाला है। और पूरा जो जितना जमावड़ा, पूरे जितने मीडिया पर्सन आए, मैं मेरे ख्याल है अगर दल सबसे बड़ा आया तो इस बार मीडिया दल भी बहुत बड़ा आया, सारे के सारे वहीं पे खड़े और मैं भी उसी शूटिंग रेंज में ही खड़ा हूँ।
तो मतलब हम सबकी नजरें जो है भारत के अभिनव बिंद्रा पर हैं, और देखना ये कि क्या वो पदकों की तालिका में अपनी जगह बना सकते हैं या नहीं, अगले कार्यक्रम में तक ये सूरत साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नॉरिस प्रीतम, सीधे रियो से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा में सिविल अस्पताल पर आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई है और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में करीब 18 वकील शामिल हैं। पाकिस्तान के गौरक्षा दल के पंजाब के गौरक्षा दल के प्रमुख सतीश कुमार पर गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों को पीटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
और यहीं पर अपने श्रोताओं को बता दें कि जिस मैच का हम जिक्र कर रहे थे, भारत और जर्मनी का, तो जर्मनी एक गोल कर चुका था। इस समय भारत ने भी एक गोल कर दिया, यानी कि दोनों का हिसाब बराबर हो गया 1-1, तो नज़र अभी बनी हुई है। कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।